योना अध्याय एक। बाइबल में योना ऐसा रोचक भविष्यद्वक्ता है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। आइए आज हम योना से भेंट करें और देखें वो कैसा व्यक्ति था और उसने क्या किया। योना अध्याय एक पद एक और दो। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। निनवे एक बड़ा शहर था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन संसार का सबसे बड़ा शहर था। योना की पुस्तक में आगे चलकर इसका जिक्र है कि निनवे की दूरी 3 दिन की पद यात्रा थी। कहने का अर्थ ये है कि निनवे को पार करने में 3 दिन लगते थे, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए 3 दिन पैदल चलना होता था। अतः निस्संदेह ये एक बड़ा शहर था। सच तो यह है कि निनवे की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस शहर की जनसंख्या 120,000 थी। निस्संदेह ही वो एक बड़ा शहर था, लेकिन समस्या ये थी कि वो एक दुष्ट शहर था। निनवे अशूरों असीरिया के राज्य की राजधानी था। इतिहास गवाह है कि अशूर बहुत क्रूर होते थे। इतिहास हमें बताता है कि अशूर युद्ध में अपने दुश्मनों का अंग भंग कर देते थे। वे अपने युद्ध बंदियों को पशुओं की तरह हांकते थे, उनके शरीर के अंग काट देते थे, नाक काटना, कान काटना आदि, और उनकी जीभ को भी खींचकर निकाल लेते थे। इस प्रकार वे भयावह रूप से क्रूर थे और अपने युद्ध बंदियों को बड़े बुरे तरीके से अंग भंग कर देते थे। इतिहास हमें ये भी बताता है कि कुछ ऐसे शहर थे जो अशुरों की सेना द्वारा घेरे गए, और जब आत्मसमर्पण का समय आया तब उन्होंने सामूहिक आम हत्या कर ली। यही अशूर राज्य था जिसने उत्तरी राज्य इसराइल को जीत लिया था, और उन्होंने दक्षिणी राज्य के विरुद्ध आकर यरूशलेम को भी घेर लिया था। यरूशलेम बाहरी संसार से कट गया था और अशूरों के घेरे में था। अशूरों के राजा सन्हेरीब ने राबशाके को हिजकिया के पास धमकी भरे पत्रों के साथ भेजा, जिसमें परमेश्वर की निंदा की गई थी। हिजकिया ने वो पत्र परमेश्वर के सामने फैलाकर कहा, परमेश्वर देख, ये आदमी क्या करने की मनसा करता है। वो उन्हें धमकी दे रहा था कि जब वे उसके हाथ में पड़ेंगे तब वो कैसे उनको काटेगा, तड़पाएगा, यातना देगा और क्या क्या करेगा। हिजकिया ने उन पत्रों को परमेश्वर के सामने रखा और कहा, इन लोगों को देख क्या कर रहे हैं, कि ये क्या करने वाले हैं। परमेश्वर, वे ऐसा कर सकते हैं, वे सक्षम हैं। लेकिन उसी समय यशया भविष्यद्वक्ता हिजकिया से कह रहा था, देख हिजकिया, तू परेशान मत हो, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। वो तुम्हें अशूरों के हाथ से छुड़ाएगा। वे परमेश्वर द्वारा अपने देश लौटा दिए जाएंगे और राजा अपने ही देश में घात किया जाएगा। अतः तू परेशान मत हो, केवल परमेश्वर में भरोसा रख, परमेश्वर सब संभाल लेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत कठिन था, क्योंकि असीरिया की सेना की संख्या बहुत थी, 185,000 से ज्यादा सैनिकों ने यरूशलेम शहर को घेर रखा था। उनकी खाद्य सामग्री की आपूर्ति बंद की जा चुकी थी। वे लोग दीवार के पास चिल्लाकर कहते थे, हिजकिया, ये कहकर तुम्हें बेवकूफ न बनाए कि परमेश्वर पर विश्वास करो, इसराइलियों के ईश्वर कहां थे, सीरिया के ईश्वर कहां थे, उन दूसरे राष्ट्रों के ईश्वर जिन्हें हमने जीता है कहां थे? वे उनको हमारे हाथों से बचाने में कामयाब नहीं हुए, और ना ही तुम्हारा ईश्वर तुम्हें हमारे हाथों से बचाने में कामयाब हो पाएगा। हिजकिया की बातों पर विश्वास मत करो जो वो कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, और जो लोग दीवार पर बैठे थे इन धमकियों को सुन रहे थे और कांप रहे थे, और उन्होंने उनकी निंदापूर्ण बातें सुनी थी कि वे किस प्रकार एक एक इसराइली को अलग करके यातनाएं देंगे और अंग भंग करेंगे। परंतु इधर यशया कह रहा था, शांति रख, चिंता मत कर हिजकिय्याह, परमेश्वर सब संभाल लेगा, परमेश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा, चिंता मत कर हिजकिय्याह, परमेश्वर पर भरोसा रख। एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि यरूशलेम के निवासी सुबह उठकर अशूरों असीरिया के डेरे को देखने दीवार पर गए, तो ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अशूरियों की पूरी सेना 185,000 सैनिक भूमि पर मृत पड़ी थी। उस रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत अशूरों के डेरे के बीच में गया और उन्हें नष्ट कर दिया। सन्हेरीब राजा अशूर देश को भाग गया, और जैसे ही वो रिमोन देवता के मंदिर गया, उसके दो बेटों ने उसे मार दिया और अमोनियों में भाग गया, और सन्हेरीब के तीसरे बेटे ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। इस तरह अशूरों की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जब परमेश्वर ने योना से निनवे जाकर उस बड़े और भ्रष्ट शहर के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को कहा था, तब अशूर राज्य संसार पर प्रभुता करने वाली शक्ति नहीं था। ये मिस्र, सीरिया, आराम और अशूर के बीच स्पर्धा का विषय था, लेकिन धीरे धीरे अशूर राज्य प्रभुत्व और शक्ति हासिल कर रहा था। इसराइल और यहूदा के लिए वे सच में एक खतरा बनते जा रहे थे। इस समय परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े शहर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना अध्याय 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को चला जाए। निनवे इसराइल से उत्तर पूर्व में था, परंतु योना ने पश्चिम को जाने वाला जहाज पकड़ा। वो परमेश्वर की बुलाहट से भागा। परमेश्वर उसे बुला रहा था कि वो जाकर अन्य जातियों में प्रचार करे, एक ऐसा काम जो वो करना नहीं चाहता था। उसमें एक जन्मजात भावना थी कि छुटकारा यहूदियों का है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। इस कारण वो अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना चाहता था कि परमेश्वर के नाम का संदेश दे, और इसलिए वो यापो नगर को भाग रहा था। ये रुचिकर है कि बहुत सालों बाद इसी बंदरगाह के शहर याफा में, जब पतरस चमड़े का धंधा करने वाले शिमोन के घर की छत पर था, तब उसने एक चादर स्वर्ग से उतरती देखी जिसमें हर प्रकार के पशु और रेंगने वाले प्राणी थे, और परमेश्वर ने कहा, पतरस उठ, मार और खा। और जब पतरस ने विरोध किया और कहा, प्रभु, मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है, परमेश्वर ने कहा, जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। ऐसा 3 बार हो जाने के बाद पतरस अचंभित था। इसका अर्थ क्या हो सकता है? और परमेश्वर ने उसे बात करके कहा, नीचे कुछ मनुष्य फाटक पर है और तुझे खोज रहे हैं, उनके साथ जा और कोई सवाल मत करना। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है। इस प्रकार पत्रस याफा में अन्य जातियों में सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया। ये रुचिकर है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। योना ने इसी यापो नगर में जहाज पकड़ा था कि अन्य जातियों में प्रचार करने की अपेक्षा तर्शीश भाग जाए। आगे चलकर याफा नगर में ही परमेश्वर ने पत्रस को बुलाया कि वो अन्य जातियों में जाएं और इस प्रकार अन्य जातियों में सुसमाचार के प्रचार का द्वार खोला गया। योना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भागने की कोशिश कर रहा था। बाइबल के विद्वान तर्शीश की भौगोलिक स्थिति के बारे में विभाजित है। कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं ये स्पेन का हिस्सा है, दूसरे कहते हैं इंग्लैंड है। विद्वानों का झुकाव इंग्लैंड की तरफ अधिक है। तर्शीश जहां कहीं भी था वो उस समय के परिचित संसार का दूरस्थ किनारा था। आप उस समय के सभ्य दुनिया में तर्शीश से आगे नहीं जा सकते थे, वो अंत था। तर्शीश के आगे जंगल था और पहाड़ी चट्टाने और दरारें थी और आगे गरजता हुआ प्रशांत महासागर था जहां जहाज खो जाते थे। अटलांटिक की यात्रा पर जाने वाले कोई जहाज कभी वापस नहीं आया था। लोग सोचते थे कि वे संसार के किनारे पर पहुंचकर वो बाहर गिर गए। तर्शीश इतना दूर था कि कोई वहां जाने का साहस कैसे करे, परंतु योना वही जा रहा था। वो ये सोच रहा था, जितना हो सके मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा, मैं तर्शीश चला जाऊंगा, मैं परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर के मुख से छिप जाऊंगा। अब ऐसे भी अनेक लोग हैं जो परमेश्वर को एक स्थान में सीमित करने की गलती करते हैं, जैसे कि परमेश्वर एक ही स्थान पर वास करता है, कहीं और नहीं। जैसे परमेश्वर यहां आराधनालय में रहता है, आपके घर में नहीं। मैं प्रार्थना करने के लिए चर्च में जाना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर के करीब हो सकूं। मैं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर 5000 फीट ऊपर जाना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर के ज्यादा नजदीक हूं, जैसे कि परमेश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड पर कहीं छुट्टी पर गया हुआ हो। जी हां, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप किसी गुब्बारे में या किसी अंतरिक्ष यान में बैठ जाएं तो आप परमेश्वर के और भी करीब जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में या कोई और भी ब्रह्मांड हो तो भी सब जगह मौजूद है। वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के बारे में रोचक बातें करते हैं। एक रोचक बात जो वो कहते हैं वो है काला छेद। जब इस काले छेद के बारे में बहुत रोचक सिद्धांत है। आप देखिए, हर एक वस्तु पुलकित अणुओं से बनी है और अणु प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अणुओं में ठोस पदार्थ से ज्यादा रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए, यदि हाइड्रोजन गैस का अणु फुटबॉल के बराबर हो तो उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन उसकी नाभि से 4,500 किलोमीटर दूर होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन के अणु में अनुपात के अनुसार कितना रिक्त स्थान होगा। इस कारण वे कहते हैं कि अणुओं में ठोस पदार्थ की तुलना में रिक्त स्थान अधिक होता है। वे कहते हैं कि अगर हमारे शरीर के सारे अणु इस प्रकार गिर जाएं कि उनमें उपस्थित रिक्त स्थान न रहें, तो आप एक ऐसा कण बन जाएंगे जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी और आप कहेंगे, अरे सब लोग कहां गए? तब आप अपने मित्र को खोजने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम में लेंगे। यहां रोचक बात तो यह है कि आपकी आकृति इतनी सूक्ष्म हो जाने के उपरांत भी आपका भार कम नहीं होगा। यदि कोई आपको धूल का कण समझकर फूंक मारकर उड़ाए तो आप हिलेंगी भी नहीं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की व्यास 12,000 किलोमीटर है, अर्थात आप पृथ्वी के केंद्र से 6,000 किलोमीटर दूर हैं। पृथ्वी के केंद्र से 6,000 किलोमीटर दूर होने पर आपका वजन वही है जो आप तौलकर अपने आप को पाते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का केंद्र हमें खींचता है। अब हम पृथ्वी को दबाना शुरू करें और यहां तक दबाएं कि उसका व्यास 12,000 किलोमीटर से घटकर 6,000 किलोमीटर हो जाएगा, तो आप पृथ्वी के केंद्र से केवल 3,000 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इस स्थिति में पृथ्वी का भार तो वही होगा, परंतु आपका भार बहुत अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि आप केंद्र के निकट आ गए हैं। इसके कारण आपका भार कई हजार किलोग्राम हो जाएगा। अब यदि आप पृथ्वी को दबाते हुए फुटबॉल के बराबर कर दें तो आप पृथ्वी के केंद्र के अत्यधिक निकट आ जाएंगे, जिसके कारण आपका भार 10 अरब किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। अब यदि आप पृथ्वी को दबाते दबाते उस स्थान तक ले आए कि वो एक काला दाग मात्र रह जाए और सब कुछ अदृश्य हो जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक हो जाएगा कि उससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल पाएगा। दूसरे शब्दों में संपूर्ण प्रकाश इस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भीतर खींच लिया जाएगा और केवल एक काला छेद दिखाई देगा। ब्रह्मांड में काले छेद का सिद्धांत यही है कि आप पृथ्वी को दबाते दबाते उस बिंदु तक पहुंच जाएं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रकाश का भी विकिरण न हो सके। अब अगर आप इस खाली छेद में कदम रखें तो वैज्ञानिकों के अनुसार आप एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, और यदि आप फिर से किसी एक पदार्थीय पिंड को उसी रीति से दबाते चले जाएं कि एक और काला छेद बन जाए जिसमें आप प्रवेश कर सकें और एक नए ब्रह्मांड को पाएं। आप इस चरण को दोहराते जाएं तो आपको नए नए काले छेद मिलते जाएंगे। ये बड़ा रोमांचकारी लगता है, परंतु वैज्ञानिक यही कहते हैं। अब आप देखिए, वस्तुओं को देखने के लिए हमें रोशनी चाहिए, और जो हम देखते हैं वो किसी वस्तु से प्रतिबिंबित रोशनी होती है। हम वस्तु को नहीं देखते, लेकिन उस वस्तु से टकराकर आने वाली रोशनी को हमारी आंखें आकार में देखती हैं। परंतु यदि गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक शक्तिशाली हो कि प्रकाश की किरणें बाहर आने की अपेक्षा भीतर की ओर खिंच जाए, तो ये काले छेद की रचना होती है। ये रचना अणुओं को उस स्थिति तक दबाने से प्राप्त होती है जहां उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि प्रकाश की किरणों का परावर्तन असंभव हो जाता है। योना परमेश्वर के सम्मुख से भागने की बात कर रहा है, लेकिन आप भाग नहीं सकते। अगर आप काले छेदों में से एक में, अर्थात एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर वहां भी है और वो उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। पिता का घर कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा कि उसमें बहुत सारे भवन होंगे। वे भवन क्या ब्रह्मांड भी हो सकते हैं खाली छेद में? पौलुस प्रेरित जब एरियोपोगस में एपिक्यूरी पंडितों से बात कर रहा था, तब उसने उनसे कहा, मैं समझता हूं कि आप बहुत धार्मिक हैं, क्योंकि जब मैं आपकी सड़कों पर घूम रहा था तब मैंने सारी वेदियों पर ध्यान दिया जो आप लोगों ने अपने देवताओं के लिए बनाई है। और एक कोने में मैंने एक वेदी देखी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यही वो ईश्वर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यही वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और सब वस्तुओं को बनाया और उसमें हम जीते और चलते हैं। उसी में हमारा सब कुछ है। मैं परमेश्वर से घिरा हुआ हूं। मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। मैं जहां भी रहूं परमेश्वर से मैं घिरा हूं। दाऊद भजनकार ने कहा, भजन संहिता 139 पद 8 से लेकर 10 तक, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। मैं परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता। मैं परमेश्वर से घिरा हुआ हूं और इसलिए परमेश्वर को किसी स्थान विशेष में सीमित मानना उचित नहीं है। जब मैं छोटा था और संडे स्कूल जाता था तब हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया था कि सिनेमा देखना जाना दुष्टता का काम है और उन्होंने हमें एक छोटे लड़के की कहानी बताई जो किसी नाट्यशाला में चल रहे नाटक को देखना चाहता था। वो उसे देखने के लिए ललचा रहा था लेकिन वो जानता था कि प्रभु नहीं चाहता है कि वो अंदर जाए और अगर उस समय उठाया जाना हो गया तो वहां अंदर होने के कारण वो नहीं उठाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं है। ये विचार मेरे मन में घर कर गया। अब वो बालक परमेश्वर से कहता है, प्रभु अगर बाहर इंतजार करने में बुरा ना माने तो मैं आपके पास एक डेढ़ घंटे में आ जाऊंगा। जैसे हम परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जहां भी रहूं मैं हमेशा परमेश्वर से घिरा रहता हूं। मैं सोचता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। मैं परमेश्वर से नहीं भाग सकता। एलिशा के बारे में देखिए जो परमेश्वर के सर्वव्यापी उपस्थिति का बहुत अच्छा उदाहरण है। राजा बेन-हदद अपने सेनापतियों से सवाल कर रहा था कि उनकी सुरक्षा में दरार कहां थी। उसके सेनापति तो यही शपथ खा रहे थे, सुनिए हम आपसे सच कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा की सूचनाओं का भेद नहीं खोला। उधर समस्या तो यह है कि इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। जो बातें आप अपने बिस्तर में करते हैं वह उन बातों को जान लेता है। भविष्यद्वक्ता को कैसा पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर उसे सब कुछ बताता था। आप परमेश्वर से मत भागिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, आप परमेश्वर से नहीं बच सकते। योना का ये भ्रम था कि वो परमेश्वर से दूर भाग सकता था। उसका भ्रम ये था कि वो परमेश्वर और उसकी बुलाहट से दूर भाग सकता था। बहुत लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से दूर भागकर वे अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं परमेश्वर से ज्यादा अच्छी तरह अपने जीवन और लोगों के बारे में सोच सकता हूं। अगर मैं निनवे में जाकर अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करूं और वे विश्वास ले आए और पश्चाताप करें तब परमेश्वर नम्र और दयालु होने के कारण उन्हें माफ कर देगा और उन्हें नष्ट नहीं करेगा। अगर वे नष्ट नहीं हुए तो वे हमारे लोगों को नष्ट कर देंगे। मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तर्शीश को जाऊंगा। मैं निनवे से इतना दूर चला जाऊंगा कि वहां किसी मनुष्य का भी पहुंचना संभव ना हो। इसलिए वो यापो को गया ताकि परमेश्वर के सामने से तर्शीश को भाग जाए और उसे एक जहाज भी मिल गया। उसने किराया दिया और जहाज के निचले हिस्से में चला गया। वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। योना अध्याय 1:4-5। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग नाविक डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अब लोग योना की पुस्तक के इस चमत्कार से परेशान होते हैं, लेकिन प्रायः उनको जो हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है कि योना उस बड़ी मछली के द्वारा निगल लिया गया। लेकिन सच में उस मछली तक जाने से पहले इसमें परमेश्वर का हाथ होने के सबूत है। तूफान जो आया वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, एक चमत्कारी तूफान जिसे परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन उस तूफान में भी योना सो रहा था, ये भी परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म ही था। क्या आप कभी तूफान में उछलती हुई नाव में गए हैं या जहाज के नीचे के भाग में गहरी नींद में सोए हैं? योना अध्याय 1:6-9। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, एक और आश्चर्यकर्म, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। मैं महान परमेश्वर यहोवा ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता से डरता हूं। फ्रांसिस शेफर कहते हैं कि शब्द ईश्वर आज लोगों द्वारा बिना परिभाषा के साधारण रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तब हमें उसकी व्याख्या में शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला। तभी हम लोगों को अपने परमेश्वर की परिभाषा दे सकते हैं कि हम किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत से हैं। लोग परमेश्वर शब्द को किसी भी अर्थ में काम में लेते हैं, इसलिए यहां वो यहोवा की परिभाषा बताता है जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाया है। योना अध्याय 1:10। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसने उन्हें बताया कि वो परमेश्वर के सम्मुख से भागने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर की पुकार से कि वो अन्य जातियों में जाएं और प्रचार करें। योना अध्याय 1:11-13। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? इस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी क्योंकि उसने यात्रा करने के लिए किराया दिया था और किसी किराए देने वाले यात्री को फेंकना सभ्य नहीं था। योना अध्याय 1:13-14। वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके क्योंकि लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। परमेश्वर, हमें दोष मत देना, हम इस आदमी को फेंकने जा रहे हैं, हम इसके लिए नाश नहीं होना चाहते, लेकिन प्रभु इसको फेंकने का दोष हम पर मत लगाना, क्योंकि तूने ही इस मनुष्य के कारण हम पर ये विपत्ति डाली है। इसलिए प्रभु, जब हम इसको जहाज से बाहर फेंक दे तो हम पर दया करना। योना अध्याय 1:15। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें थम गई। आप देखिए, योना की पुस्तक में चमत्कारों का क्रम बना हुआ है। योना अध्याय 1:16। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। मैं अनुमान लगा सकता हूं ये सब देखकर उस जहाज पर एक अलग दृश्य बन गया होगा। योना अध्याय 1:17। यहोवा ने एक बड़ा सा मच ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच के पेट 3 दिन रात पड़ा रहा। परमेश्वर ने एक महामच को नियुक्त किया था। ये कैसा महामच था? बाइबल इसका वर्णन नहीं करती। हो सकता है कि वो एक बड़ी वेल मछली या एक शार्क थी। वो जो कुछ भी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ था, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब यहां बाइबल के आलोचकों के पास कार्य करने के लिए एक विषय है, और आप बाइबल की टिप्पणियों में और बाइबल की टीकाओं में योना की दंत कथा या योना की कल्पित गाथा पढ़ सकते हैं, या आप मनुष्य के तार्किक प्रयास को पढ़ सकते हैं कि वो जलचर वास्तव में मछली नहीं, कोई और जहाज था जिसके कप्तान ने योना को पानी में से बाहर निकाल लिया। ये जहाज यापो की तरफ वापस जा रहा था और वे उसे सुरक्षित यापो ले आए। इस प्रकार आप अनेक मानवीय तर्कों को पढ़ सकते हैं जिनमें योना की कहानी के अलौकिक परिप्रेक्ष्य को हटाने का प्रयास किया गया है। योना की पुस्तक से आलोचकों के लिए उत्पन्न समस्या ये है कि यीशु उस पर विश्वास करता था। योना की किताब के आलोचकों के लिए ये एक समस्या है। उन सारे आलोचकों की अपेक्षा जिन्हें मैंने अब तक पढ़ा है, मैं यीशु के साथ अपना मत रखूंगा। मेरे विचार में यीशु इन विद्वानों से जिन्होंने अपने ज्ञान में परमेश्वर के चमत्कारी परिप्रेक्ष्य को नगण्य समझा, कहीं अधिक जानता है। यीशु ने 2 बार योना से संदर्भ दिए थे। पहला, मत्ती अध्याय 12:40। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। शास्त्री और फरीसी यीशु से चिन्ह मांग रहे थे, तब यीशु ने योना की पुस्तक से ये संदर्भ दिया था। यीशु के चमत्कारों को देखकर उन्होंने उससे कहा, हमें चिन्ह दिखा कि तू मसीह है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 16:4, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनस के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा योना 3 दिन और रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये दूसरी बार है कि यीशु ने योना का संदर्भ दिया था कि वो सच्चा और वास्तविक अनुभव था। इस कारण मुझे इसकी सच्चाई को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी रचनाएं भी की है जो किसी इंसान को निगलने में और कुछ समय के लिए अपने अंदर रखने में सक्षम है। हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। मुझे परमेश्वर की सृजन क्षमता के विषय कोई परेशानी नहीं है। मैं परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि को देखता हूं तो मुझे सृष्टि से कोई परेशानी नहीं है। वे बात करते हैं कि वेल का गला एक आदमी को निगलने के लिए बहुत छोटा होता है। ठीक, वो एक प्रकार की वेल होती है, लेकिन बड़ी वेल के पेट में स्क्विड, समुद्री फेनी, एक जलचर के 5 फुट व्यास की भुजाएं मिली है, जो साबित करती है कि उन्होंने स्क्विड का वो हिस्सा निकाला। हो सकता है समुद्र में अन्य विशालकाय जंतु भी है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। स्क्विड के सक्शन कप्स, चूसने वाले कटोरे के निशान भी वेल पर मिले हैं, जो व्यास में 1 फुट के थे। समुद्र की गहराई में विशालकाय स्क्विड है। मैं स्वयं वेल को और उसमें जाते हुए स्क्विड को देखना पसंद करूंगा। अगर आप उसकी फिल्म बना लें तो ये बड़ा रोचक होगा। इनमें से एक विशालकाय स्क्विड भी हो जिसके सक्शन कप्स 1 फुट व्यास के हो। परमेश्वर ने समुद्र के गहराई में बहुत रोचक रचनाएं की है जिनको अभी तक हमने नहीं देखा। परमेश्वर ने आयुब से कहा, हे आयुब, क्या तू सोचता है कि तुझे बहुत ज्ञान है? मुझे बता कि तूने क्या ये वो और वो सब देखा है। परमेश्वर ने उसे कुछ एक बातें दिखाई। वो कहने लगा कि वो सब उसकी बुद्धि से परे था। इस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात इस बड़ी मछली के पेट में रहा।